أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آيات نمبر 241. اور یہاں سے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ نکاح کا باب شروع ہو رہا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سبجیکٹ چل رہا ہے. اور گو کہ ایسا لگتا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات اور میاں بیوی کے جو آئلی قوانین ہیں, آئلی قوانین یعنی فیملی کے قوانین, ان کو تو جہاد کی مد میں آنا چاہیے تھا, لیکن جہاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ اس میں نکاح کا ذکر کیا ہے. نکاح مرد اور عورت کے درمیان دین کی روح سے ایک حلال رشتہ ہے جس کے ذریعے وہ آپس میں ایک تعلق قائم کرتے ہیں جو ان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے, اور اس سے انسان کی نسل بھی, بنی آدم کی نسل جو ہے وہ اسی طریقے سے بڑھتی ہے اور زیادہ ہوئی ہے اور پھیلی ہے دنیا میں. تو نکاح بہت امپورٹنٹ ایک آپ سمجھیں کہ دین کا حصہ ہے. گو کہ قرآن کی روح سے نکاح فرض نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی کی سنت ہے یہ. اور نکاح ایک بہت امپورٹنٹ کارنر سٹون ہے فیملی لاء کا. آئلی قوانین اسی کو کہتے ہیں. کرمنل لاء ہوتا ہے جس میں جرم کے, جرائم کے فیصلے ہوتے ہیں, اور فیملی لاء ہوتا ہے جس میں گھریلو معاملات کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا حکم جو نکاح کی مد میں دیا جا رہا ہے, ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ کس سے نکاح ہو سکتا ہے اور کس سے نہیں ہو سکتا. ولا تنکحوا المشرکات, اور مشرقہ عورتوں سے نکاح نہیں کرنا. یہ حکم جب آیا تھا تو صحابہ نے اپنی مشرقہ بیویوں کو طلاق دے دی تھی. تو مومن جو ہیں وہ مشرقہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. اس میں سوال یہ ہوتا ہے کیا اہل کتاب جو ہیں ان کے ساتھ نکاح حلال ہے یا نہیں. بات یہ ہے کہ یہود جو ہیں وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اور نصارہ جو ہیں, کرسچن جو ہیں, وہ جیزس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں امتیں جو ہیں یہ مشرک ہو چکی ہیں. میں کسی پہ فتویٰ نہیں دے رہی, ان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی تورات اور اپنی انجیل پر پورا ایمان رکھتے ہوں گے اور اللہ کے احکامات بجا لاتے ہوں گے, اور یوم آخر پہ ان کا ایسا یقین ہوگا جیسا ہمارا ہونا چاہیے, ضرور ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. لیکن من حیث القوم یہ لوگ جو ہیں یہ شرک کر چکے ہیں. تو اہل کتاب بھی تقریباً اسی زمرے میں آتے ہیں جس میں مشرک آتے ہیں. ولا تنکحوا المشرکات, مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرنا, حتی یؤمننا, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا اما تم مؤمنا, اما ایک لونڈی جو مومنہ ہے, خیر من مشرکہ, بہت بہتر ہے مشرکہ عورت سے. ولو اعجبتکم, چاہے تمہیں وہ کتنی بھی اچھی لگے. ولا تنکحوا المشرکین, اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو, حتی یؤمنوا, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد مؤمن, اور البتہ ایک غلام جو مومن ہے, خیر من مشرکین, بہتر ہے مشرک مرد سے. ولو اعجبکم, چاہے وہ تمہیں کتنا بھی بھلا لگے. تو انسانیت میں عزت کا جو معیار ہے, ظاہر ہے جب نکاح کیا جا رہا ہے تو بہترین کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں ہم. اور اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کتنا بھی خوبصورت ہو, کتنا بھی ہینڈسم ہو, کتنا بھی امیر ہو, کتنا بھی مشہور ہو اور کتنا بھی اچھا لگے, اگر وہ مشرک ہے تو اس سے تعلق قائم کرنے کا ہرگز, یعنی کہ حرام ہے قرآن کی روح سے ان سے تعلق قائم کرنا. یہاں پہ یہ غلط فہمی بھی اپنی صحیح کر لیں کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اور عورتوں کو اجازت نہیں ہے. مردوں اور عورتوں دونوں کو مشرکوں سے نکاح کرنے کی ممانعت ہے, یاد رکھیں. اولئک, یہ وہ لوگ ہیں, یدعون الی النار, جو بلاتے ہیں آگ کی طرف. واللہ یدعو, اور اللہ تو بلاتا ہے, الی الجنتی, جنت کی طرف. والمغفرت بھی اذنہ, اور مغفرت اس کی اذن سے, اس کی اجازت سے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ, اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات, للناس, انسانیت کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, نکاح کے باب میں دوسرا جو امپورٹنٹ डिस्क्रिप्शन है अल्लाह दे रहा है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे पूछते हैं हैज़ के बारे में। औरतों की जो माहवारी है उसको अरबी में हैज़ कहते हैं। कुल, फरमा दीजिए, हुआ अजन, ये एक तकलीफ़ का वक्त है, एक अजियत का वक्त है। अगर आप तर्जुमों में देखें तो यहाँ पे लिखा होता है ये पलीदी है, ये गंदगी है। अजन जो है ये अजियत है, तकलीफ देह है। फ़अतज़िलु, उज़ल, आयन, ज़े, लाम, उज़ल का मतलब है अलग रहना, किसी के साथ ताल्लुक़ ना कायम करना, अज़दवाजी ताल्लुक़ ना कायम करना। फ़अतज़िलु, पस अलग रहो, अन्निसा, बीबियों से, फिल महीद, इस दौरान, हैज़ के दौरान। हैज़ के बारे में यहूद का जो अकीदा था वो ये था कि औरत इतनी नापाक होती है कि वो जिस जगह पे रहती है वो भी नापाक हो जाती है। तो उन्होंने अपनी बस्तियों से बाहर ऐसे घर बनाए हुए थे और ऐसे गार बनाए हुए थे, इन मखसूस दिनों में औरतें वहाँ चली जाती थीं और वहाँ रहती थीं, और जब पाक होती थीं तो वापस आ जाती थीं, और वो बच्चे पैदा करने के लिए भी उन गारों में और उन कमरों में जाती थीं, घरों के अंदर जो है वो ये नहीं करने देते थे उनको। इसके मुकाबले में नसारा जो हैं वो बिल्कुल ही लूज थे और वो इसको कोई इसको गंदगी समझते ही नहीं थे। इन दिनों में भी अगर अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना हो तो वो करते थे। तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि हम एक उम्मत वस्त हैं, तो ये ऐसी गंदगी नहीं है कि कमरे से निकल जाए इंसान, और मसाइल इसके आप अच्छी तरह समझ लें। क्या है, इसके दौरान अगर किसी ने कोई लिबास पहना है लेकिन उस पर कोई खून का छींटा नहीं लगा, कोई गंदगी नहीं लगी, तो क्या वो लिबास बग़ैर धोए दोबारा पहन सकते हैं? जी हाँ, पहन सकते हैं। अगर हैज़ के दौरान औरत जो है वो एक मसहफ, कुरान या जानेमाज उठा के बग़ैर खोले किसी को पकड़ा सकती है? जी हाँ, पकड़ा सकती है, ये हदीस से साबित है। और हैज़ के दौरान कोई ज़िक्र औरत कर सकती है, ज़रूर कर सकती है, नमाज नहीं पढ़ सकती, मसहफ के कुरान की राइटिंग को हाथ नहीं लगा सकती, तिलावत सुन सकती है, जिक्र कर सकती है, सारे काम कर सकती है। तो औरतों से अलग रहो। वला तकरीबुहुन्ना, और उनके करीब ना जाओ, हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो तहारत में आ जाएं। दो हैज़ के बीच में जो सफाई का एक पीरियड होता है, तहारत का एक पीरियड होता है, उसे तोहर कहते हैं। त्वे हे रे तोहर, हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा तत्वहरना, बस जब वो पाक हो जाएं, फातूहुन्ना, बस आओ उनके पास, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जैसे तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी जायज़ तरीके से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुत तवाबीना, मोहब्बत करता है, दोस्त रखता है तौबा करने वालों को, व युहिब्बुल मुतत्वहिरीन, और दोस्त रखता है पाकीज़ा लोगों को। निसाउकुम हर्सुल्लकुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं। फातू हर्सकुम, बस आओ तुम अपनी खेती में, अन्ना शेतुम, जैसे तुम चाहो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और भेजो अपने लिए आगे, भलाई भेजो अपने लिए आगे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नकुम मुलाकूहु, ये कि तुम उससे मुलाकात करने वाले हो। वबशिरिल मोमिनीन, और खुशखबरी दे दें मोमिनों को। ये एक कंट्रोवर्शियल आयत है, इसके इंटरप्रिटेशन में लोगों ने मुख्तलिफ तर्ज इख्तियार किए हैं। निसाउकुम हर्सुल्लकुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं। देखें, कुरान की जो तमासील हैं उनको बिल्कुल वैसे इमेजिन करें जो वो अल्फाज हैं, उसमें अपनी इमेजिनेशन को वाइल्ड ना होने दें, दूर ना जाने दें अपनी इमेजिनेशन को। तसव्वुराती दुनिया में आप कहाँ पहुँच जाते हैं कि ये अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम बीवियों के पास आओ जहाँ से तुम चाहो? अल्लाह कह रहा है तुम्हारी बीबियां तुम्हारी खेतियां हैं, तुम अपनी खेतियों की कितनी हिफाजत करते हो, बाड़े लगाते हो उनके इर्द गिर्द, कोई किसी और का मवेशी उनके अंदर चर ना जाए, तुम अपनी खेतियों को साफ सुथरा रखते हो, जड़ी बूटियां नहीं पैदा होने देते उनमें, कीड़े मकौड़े नहीं पैदा होने देते, खूब सफाई का अहतमाम करते हो, बेहतरीन पानी बेहतरीन बीज लगाते हो तुम, और अपनी खेती की तुम पूरी तरह देखभाल करते हो ताकि वो तुम्हें एक बेहतरीन पैदावार दे। तो इस आयत का औरत को खेती से तशबीह देने का मकसद ये है। अगर आपको लगे कि मैं बहुत तेज पढ़ा रही हूं, दरअसल ये है कि ये अहकामात पे दर पे आए हैं, और अगर इनको एक साथ ना पढ़ा जाए तो फिर ये समझ नहीं आते। अगर आपको मेरी स्पीड तेज लगती है तो बीच में से रिवाइंड करके दोबारा से सुन लें, लेकिन ये पूरा चैप्टर जो है ये मैंने आपको एक साथ पढ़ाना है, तभी आपको ये समझ आएगा। तो निकाह के बाब में पहले मुशरिकों से निकाह की हुरमत बयान कर दी गई, उसके बाद अल्लाह ताला ने हैज़ का एक सिस्टम बयान किया कि ये एक नापाकी है और इनसे औरतों से इन दिनों में दूर रहें, और तहारत जो है वो ज़रूरी है मर्द और औरत के ताल्लुक को कायम करने के लिए। फिर औरतों को खेतियों से तशबीह दी गई कि इनकी हिफाजत की जाए और इनकी देखभाल की जाए। वला तजअलुल्लाह, और ना बनाओ अल्लाह को उर्दतन एक निशाना, ले अईमानिकुम अपनी कस्मों का, अल्लाह की कसम खाने की ममानियत है कुरान में, ये देख लें। ना मुकरर करो अल्लाह को निशाना अपनी कस्मों का, ओंगी बोंगी कस्में खाते हो तुम और उसमें तुम अल्लाह का नाम लेते हो। ये नसारा में भी बहुत नापसंदीदा है। अगर आप स्ट्रिक्ट क्रिश्चियंस को देखें ना, तो वो बाय गॉड कहने पे बहुत बुरा मानते हैं, बहुत बुरा समझते हैं उसको। अन तबर्रु, ये कि तुम बाज आ जाओ, व तत्तकू और तकवा इख्तियार करो, व तुसलिहू बैन अन्नास और इस्लाह करो लोगों के दरमियान, वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह तो सुनने वाला और इलम वाला है। कसम की बात यहाँ पे आई है, हालांकि निकाह का बाब चल रहा है लेकिन अभी आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे कसम की बात क्यों आई है। मैंने आपको बताया है कि कुरान डिफरेंट एंगल से एक बात को पढ़ाता है, तो चूंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कसम का जिक्र आने वाला है, तो अल्लाह ताला एक तमहीद बांध रहा है और कह रहा है कि अल्लाह की कसमें ना खाओ, ये बात अल्लाह को नापसंद है। ला युआख़िज़ुकुमुल्लाहु, नहीं तुम्हारा मुआवज़ा करेगा, तुम्हें पकड़ेगा अल्लाह, बिल्लग़वे लगव किस्म की, फ़ी अईमानिकुम तुम्हारी कस्मों में से, जो तुम ऐवी कस्में खाते हो ना, कस्में कस्में करके वल्लाह वल्लाह करके जो तुम बातें करते हो, अल्लाह तुम्हें उस पर नहीं पकड़ेगा। वलाकिन युआख़िज़ुकुम, लेकिन वो तुम्हारा मुआवज़ा करेगा, तुमसे हिसाब लेगा, बिमा कसबत क़ुलूबुकुम जो तुम्हारे दिलों ने किया। वल्लाहु गफूरुन हलीम और अल्लाह तो बख्शने वाला बड़े तहम्मुल वाला है, बड़ी नरमी वाला है। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, युलूना, ये लफ्ज़ आ गया, नया लफ्ज़ है युलूना, ये निकला है ईला से, अलिफ ये लाम अलिफ ला और हमज़ा ईला। ईला का मतलब है, ये एक रस्म थी जो मुशरिकों में पाई जाती थी, एक किस्म की तलाक थी जो ये अपनी बीवियों को देते थे। ये कहते थे कि तू तो ऐसी है जैसे मेरी माँ, या कहते थे तेरी पुश्त मुझ पर ऐसी हराम है जैसे मेरी माँ की पुश्त। तो ये एक तलाक होती थी जिसमें उस औरत को तलाक हो जाती थी लेकिन वो लटकी रहती थी, मतलब कि वो दोबारा रुजू एनी टाइम कर सकते थे। तो वो एक वक्त में तीन तीन चार चार औरतों, दस दस बीस बीस औरतों से निकाह करके चार चार से ईला कर लेते थे, पांच पांच को ईला करके लटका देते थे कि ये तो मुझ पर हराम है, और निकाह करते थे। तो लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, जो ईला कर लेते हैं अपनी बीबियों से, तरबसो वो रोके रहें, अरबाते चार अशहुरिन चार महीने, वो चार महीने रुके रहें, वो चार महीने में यानी रुजू कर सकते हैं। अगर ऐसी स्टूपिड कसम उन्होंने खा ली है बीवी के पास ना जाने की, तो वो फिर रुके रहेंगे चार महीने तक। फ़इन फ़ाउ, बस वो लौट आए, फ़इन अल्लाह, बस बेशक अल्लाह गफूर रहीम, वो बख्शने वाला बार बार रहम करने वाला है। अगर चार महीने में उन्होंने रुजू कर लिया तो ईला रिवर्स हो जाएगा, चूंकि ईला ज़माने जाहिलियत की या प्री इस्लामिक एक डाइवोर्स का तरीका था, तलाक का तरीका था। और मैंने पहले आपको हुरमत के महीनों में पढ़ाया था कि इस्लाम ने वो रसूमात कम्प्लीटली मनसूख नहीं की, क्योंकि वो पूरा मुआशरा उनका आदी था, वो पूरे मुआशरे के कस्टम्स थे। इस्लाम किसी कस्टम का दुश्मन नहीं है, अनलेस वो कस्टम मुशरिकाना हो। तो इस्लाम ये कहता है कि तुमने अगर ईला कर ही लिया है तो चार महीने में तुम रुजू कर सकते हो, वापस बीबी से ताल्लुक बना सकते हो अच्छी तरह, वरना चार महीने बाद वो आज़ाद हो जाएगी। तो इस्लाम ने तलाक के अहकामात की इब्तिदा पुराने यानी कि अब प्री इस्लामिक एक ऑर्डर को अपहोल्ड करके की है, लेकिन उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी है। जैसे अल्लाह के हर हुक्म में हुदूद होती हैं, तो हद यह है कि चार महीने के अंदर अगर रुजू ना किया तो फिर फाइनल तलाक हो जाएगी। वल मुतल्लकात, और तलाकशुदा औरतें, ये तरब बस ना, वो रोके रहें, बे अनफुसहिन ना अपने अपने आप को, सलासता खुरुइन तीन तोहर, तोहर मैंने आपको बताया था ना, दो पीरियड्स के बीच में, दो हैज़ के बीच में जो पाकिजगी का एक दौर होता है। तो ये औरतें जो हैं तलाकशुदा औरतें, ये तीन महीने तक अपने आप को रोके रहें, या तीन तोहर तक, यहाँ तक कि तीन दफ़ा उन्हें पीरियड आ जाए। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर वो औरत प्रेग्नेंट है तो उसको पता चल जाए, ये, और अगर वो औरत जैसे उसको अब पीरियड्स नहीं आते, कोई बीमारी है या वो मेनोपॉज उसका हो चुका है, अब उसको पीरियड्स नहीं आते, तो भी उसने 3 महीने रुके रहना है। ये तलाक का तरीका है, इस्लामी तलाक का तरीका है। यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि उसको तोहर तक रुके रहना है, वला यहिल्लु लहुन्ना, और उनके लिए हलाल नहीं है, अन यक्तुमना, कि वो छुपा के रखें, मा खलक अल्लाहु, जो तख्लीक किया है अल्लाह ने, फी अरहामिहिन्ना, रहम की जमा, अल्लाह ने उनके पेट में जो तख्लीक किया है, यानी अगर पेट में बच्चा है तो उनके लिए ये हलाल नहीं है कि वो बच्चे को छुपा के भाग जाएं और किसी और से निकाह कर लें। इनकुन्ना, अगर वो हैं, युमिन्ना बिल्लाह, ईमान रखती हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखरत के दिन पर। तो इस्लामी तलाक का तरीका ये अब शुरू शुरू के इब्तदाई तलाक के अहकामात हैं कि अगर किसी ने ईला कर लिया है और कसम खा ली है तो मर्द के पास तो 4 महीने हैं जिसमें वो रुजू कर सकता है। 4 महीने अगर उसने रुजू ना किया तो इस औरत को तलाक हो जाएगी, फिर ये किसी और से निकाह कर सकती है। लेकिन इसने 3 तोहर इंतज़ार करना है, अगर प्रेगनेंसी हो तो उसका पता चल जाए, और अगर ये औरत प्रेग्नेंट है जब इसे तलाक पड़ी है तो जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा इसकी तलाक फाइनल हो जाएगी। अगर अगले दिन वो बच्चा पैदा हो गया तो तलाक फाइनल हो जाएगी। वल मुतल्लकातो, और अच्छा ये हो गया है, व बऊलतुहुन्ना, और उनके शोहर अहक्को, ज़्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना, कि वो लौटाई जाएं उनको, फी जालिक, इस मामले में, इन अरादू, अगर वो दोनों इरादा रखते हैं इस्लाहन, इस्लाह का, वलहुन्ना, और उनके लिए, मिसलुल्लज़ी, बिल्कुल उसी तरह, अलैहिन्ना, एक हक है, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, मुआशरे में जो दस्तूर राइज है उसके मुताबिक, इन औरतों को हक है, मर्दों को हक है, वलिर्रिजाली, और मर्दों को, अलैहिन्ना, इन औरतों पर दर्जा, एक दर्जा ज्यादा है। वो आगे सूरह निसा में बयान होगा कि ये दर्जा क्यों है। अर्रिजालु कवामूना अलन निसा, आयत निसा है ये, कि मर्द जो हैं ये औरतों के सस्टेनर्स हैं, इनके प्रोटेक्टर्स हैं, इनके प्रोवाइडर्स हैं, इसीलिए इनको एक दर्जा हासिल है। वल्लाहु अजीज़ुन हकीम, और अल्लाह ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। अब ये ईला के बाद जो तलाक का तरीका है वो पूरा बयान हो गया। अब जो है इस्लामी तलाक का तरीका यहाँ पे बयान हो रहा है, और ये गौर से सुनना है, सबक शायद लंबा हो जाए क्योंकि औरतों के मसाइल हैं और एक साथ पढ़ाने हैं। अत-तलाक़ु, तलाक तो मर्रताने, दो हैं। ये 3 तलाक का मामला जो है ना, ये कुरान के मनाफी है। बाकी मैं बहस में नहीं जाऊंगी कि लॉ क्या कहता है और फिका क्या कहता है और शरा क्या कहता है। देखें, कुरान आपको कह रहा है अत-तलाक़ु मर्रताने, तलाकें तो दो ही हैं। एक दफ़ा तलाक दे दी औरत ने, 3 महीने रुकना है, 3 तोहर रुकना है, उस दौरान में रुजू हो सकता है। ये 3 महीने उसने शोहर के घर में गुजारने हैं, अगर ताल्लुक कायम हो गया, रुजू हो गया, तो तलाक बस ख़त्म हो गई, वापस मियाँ बीवी बन गए। लेकिन वो एक तलाक अपनी जगह पड़ी हुई है। अगर दूसरी दफ़ा तलाक दे दी तो फिर भी इसने 3 महीने रुकना है, और इस तलाक के बाद इनको निकाह सानी करना होगा, दूसरा निकाह करना होगा, तजदीद निकाह कहते हैं इसको। ये हमारे पुराने ग्रुप्स, कुरान लेसन्स और हयाल अलफलाह वालों को पता है, मैंने इसके ऊपर डिटेल में सेशन भेजा है कि तजदीद निकाह क्या होता है। 2 तलाकों के बाद 3 तोहर का इंतज़ार है, और फिर अगर तजदीद निकाह ना किया तो तीसरी तलाक ऑटोमेटिकली पड़ जाती है, तीसरी तलाक फाइनल होती है। इसको तलाक मुतलक कहते हैं, जो कि इरिवर्सिबल होती है, उसमें रुजू भी नहीं हो सकता, तजदीद निकाह भी नहीं हो सकता है, औरत फिर आज़ाद होती है कि वो दूसरा निकाह कर ले। और उसमें हलाला का मसला है कि जब तक एक आदमी से निकाह करके या ये बेवा ना हो जाए या वो आदमी इसे तलाक ना दे दे, ये अपने पहले शोहर के लिए हलाल नहीं होती। ये तलाक, ये इस्लामी तलाक है जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। 2 तलाकें हैं, फ़इम्साकुम बिमारूफ, बस रोक लेना है उसको अच्छे तरीके से दस्तूर के मुताबिक, औ तसरीहुन, या भेज देना है बे एहसान। देखिए यहाँ बेमारूफ नहीं कहा, बे एहसान, बेहतरीन तरीके से उसको भेजना है। यही इस्लाम की खूबसूरती है जिसे हमने इस कदर कबीह और बदसूरत कर दिया है कि उस औरत को तुमने एहसान के साथ भेजना है, बेहतरीन तरीके के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, सपोर्ट के साथ भेजना है। वला यहिल्लु लकुम, और तुम्हारे लिए हलाल नहीं है अंताखुजू ये कि तुम उससे ले लो मिम्मा उसमें से जो आते तुमूहुन्ना जो तुम उसे दे चुके हो शैयन कुछ भी। आजकल तलाक के सारे मसले जो हैं वो डाउरी के बेसिस पे होते हैं कि ये बीबी जो है ये हमारा सोना लेके भाग गई है और ये हमारा पैसा नकदी लेके भाग गई है और इन ये बदचलन है और इनको वापस भेजा जाए। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा होता है कि मेहर की रकम या मेहर में अगर कुछ लिखा गया है वो बचा लिया जाए और औरत तंग आके खुद ही खुला ले ले। तो ये देखें कुरान के मुनाफी हरकत है ये, तुम्हारे लिए हलाल नहीं वला यहिल्लो यानी ये हराम है कि तुम उस औरत से कुछ वापस लो। इल्ला अन यखाफा अब एक एक्सेप्शन बयान कर रही है, अन यखाफा अगर खौफ हो इन दोनों को अल्लाह युकीमा ये कि वो कायम नहीं रख सकते हुदूद अल्लाह अल्लाह की हुदूद। फ़इन खिफ तुम पस अगर तुम डरो अल्लाह युकीमा ये कि नहीं कायम रख सकते हुदूद अल्लाह अल्लाह की हुदूद। फला जुनाह अलैहिमा बस गुनाह नहीं है उन दोनों पर। फी मफ्तदत अब ये ते जो आया है ना अफ्तदत के साथ जो ते आई ये औरत के लिए है इसमें कि फिदिया दे दे वो औरत भी उसमें से तिल का हुदूदुल्लाह है ये अल्लाह की हुदूद है। फला तअतदूहा बस इनसे गुजरो नहीं इनके खिलाफ वर्जी ना करो। व मैं यतअद्दा और जो अदी करेगा जो ज्यादती करेगा हुदूद अल्लाह ही अल्लाह की हुदूद में फ़ऊलाइका पस यही लोग हैं हुमुज़्ज़ालिमून जो जालिम हैं। अगर ये इनको डर है कि ये अल्लाह की हुदूद कायम नहीं रख सकते तो औरत को हक है कि वो अपना हक महर माफ़ करके या उसे जो कुछ दिया जा चुका है निकाह के मौके पे वो वापस करके वो फिदिये में दे के अपनी आज़ादी मर्द से ले ले। खुला जो है ये सिर्फ इस्लाम का इम्तियाज है, इससे पहले औरत को ऐसा कोई हक नहीं था ना यहूद में ना नसारा में ना हिंदुओं में ना मुशरिकों में किसी में औरत को ये हक नहीं था कि वो एक टैक्स दे के वो एक पेनल्टी दे के अपने शोहर से अपनी आज़ादी खरीद ले। खुला एक तलाक है जिसमें रुजू हो सकता है लेकिन इसमें तजदीद निकाह चाहिए होता है। पहली खुला जो हुई थी जमीला बिनते सलूल मेरे ख्याल में जमीला बिनते सलाल या ऐसा नाम था उन खातून का जो बहुत खूबसूरत थी और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि मेरा शोहर देखने में बहुत बदसूरत है और मुझे डर है कि मैं अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख सकती यानी मैं इस मर्द का हक ऐसे नहीं अदा कर सकती जैसे अदा करना चाहिए मैं अपने ईमान के लिए डरती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश भी की थी उन सहाबी की क्योंकि वो बहुत उदास थे इनके लिए लेकिन फाइनली उनको एक बाग दिया गया था मेहर में जो इन्होंने कहा कि ये बाग ये वापस ले लें लेकिन मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। और फिर वो बाग उनसे लेके इन सहाबी को वापस किया गया और उन बीबी को खुला जारी कर दी गई। तो ये जो हैं खुला के मसाइल हैं। फ़इन तुल्लक़हा पस जब औरत को तलाक हो जाए फ़ला तहिल्लु लहू पस वो हलाल नहीं है उसके लिए मिम्बादो इसके बाद हत्ता तनकिहा यहाँ तक कि वो निकाह कर ले जौजन गैरहू एक और शोहर से। ये हलाला का बयान है। अगर तलाक हो गई तीसरी तलाक मतलब दो तलाकों के बाद रुजू ना हुआ और तजदीद निकाह भी ना हुआ या उसने खुला ले ली तो फिर उसके लिए ये अपने पहले शोहर के लिए हलाल नहीं हो सकती। सॉरी इसमें खुला नहीं है क्योंकि खुला रिवर्सिबल है। ये इरिवर्सिबल तलाक यानी तलाक़ बाइन जिसको कहते हैं एक तलाक़ रजई है जिसमें रुजू हो सकता है और तलाक़ बाइन जो है ये फाइनल तलाक है। तो फिर ये अपने शोहर के लिए हलाल नहीं है यहाँ तक कि ये एक और शोहर से निकाह कर ले। फ़इन तुल्लक़हा पस अगर वो दूसरा शोहर उसे तलाक दे दे फला जुनाह अलैहिमा तो फिर गुनाह नहीं है दोनों पर अन यतराजा ये कि वो रुजू कर लें। इन जन्ना अगर वो ये समझते हैं अन युकीमा हुदूद अल्लाह कि वो अल्लाह की हुदूद को कायम रखेंगे अल्लाह की हुदूद यानी कि वो एक निकाह का हक अदा करेंगे एक जायज़ ताल्लुक आपस में रखेंगे और एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रहेंगे अपने घर को तमाशा नहीं बनाएंगे। वतिल का हुदूद अल्लाह है और ये अल्लाह की हुदूद हैं युबय्यिनुहा वो उन्हें बयान करता है लिकौमी यालमून उस कौम के लिए जो इलम रखती है। व इज़ा तलक्तुमुन निसा और जब तुम तलाक दो औरतों को फबलग़ना अजलहुन्ना और वो पहुँच जाए अपनी मुद्दत को फबलग़ना बालिग पहुँच जाना तो वो पहुंच जाएं अजल हुन्ना अजल अपनी मुद्दत अपने टारगेट को अपनी लिखी हुई मुद्दत। अजल जो है इसमें तीन तोहर मैंने आपको बताए हैं। तो जब औरतों को तुम तलाक देते हो और वो अपनी मुद्दत को पहुंच जाएं फ़अम्सिकूहुन्ना पस रोक लो उन्हें बिमारूफ अच्छे तरीके से दस्तूर के मुताबिक, औसर रहो हुन्ना, या उन्हें रुख्सत कर दो बिमारूफ दस्तूर के मुताबिक। ये जो हैं ये भी तलाक के ही मसाइल हैं। वला तमसिकू हुन्ना, और तुमने रोकना नहीं है इनको ज़िरारन, नुकसान देने के ख्याल से, तकलीफ़ देने के ख्याल से, लितअतदू, ताकि तुम ज़्यादती करो। वमन यफअल ज़ालिक, और जो ऐसा काम करेगा, फ़कद ज़लमा नफ्सहू, बस उसने जुल्म किया अपने ऊपर, क्योंकि अल्लाह उससे पूछेगा। वला तत्तखिज़ू, और तुम ना बनाओ आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयात को, हुज़ुवन, मजाक। ये तीन तलाक जो एक साथ दे देते हैं, ये एक मिसाल है अल्लाह की आयात को मजाक बनाने की। तो अल्लाह की आयात का मजाक ना उड़ाओ। वस्कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम, और याद करो अल्लाह की नेमत तुम्हारे ऊपर। वमा अनजला अलैकुम, और जो उसने नाजिल किया तुम पर, मिनल किताबे, किताब में से, वल हिकमती, और हिकमत, याइज़ुकुम बिही, वो नसीहत करता है तुम्हें उसके साथ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्ली शईन अलीम, ये कि अल्लाह हर चीज़ का इलम रखता है। याइज़ुकुम, ये वाज से निकला है मोहब्बत से रहनुमाई करना, अल्लाह ताला मोहब्बत से तुम्हारी रहनुमाई करता है। वइज़ा तल्लक्तुमुन्निसा, और जब तुम तलाक दे दो औरतों को, फबलग़ना अजलहुन्ना, बस वो पहुँच जाएँ अपनी मुद्दत को, फ़ला तअदुलूहुन्ना, बस रोकना नहीं है उनको, अय्यन कहना, ये कि वो निकाह कर लें, अजवाजहुन्ना, अपने जोड़ों से, अपने शोहरों से। पहला था कि जब या तो तुम उन्हें रोक लो या जाने दो, और उन्हें ज़बरदस्ती नहीं रोकना, उन्हें इसलिए नहीं रोकना कि तुम्हारा हक मेहर माफ़ हो जाए और तुम अपना सोना उनसे वापस ले लो, और वो किसी और से निकाह के काबिल ना रहें, बल्कि वो ज़हनी मरीज़ बन जाएं। आजकल हमारे मुआशरे में जितने भी राइज तरीके हैं, उनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है इतना, लेकिन आप लोग ज़रूर अपनी तहकीक करें और फैमिली लॉ को ज़रूर देखें, जिनकी बच्चियां हैं, जिनकी बहनें हैं, और जो ख़वातीन ये सुन रही हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें फैमिली लॉ का पता हो। तो जब तुम बीबियों को तलाक दे दो तो, और वो अपनी मुद्दत को पहुंच जाएं, तो फिर उन्हें नहीं रोकना कि वो निकाह कर लें। इज़ा तरादो, जब रजामंदी हो, बैनहुम, उनके दरमियान, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से, मुआशरे में जो राइट डिसेंट तरीका है उसके मुताबिक, ज़ालिको यू असुबी ही, ये एक नसीहत है। मन काना मिनकुम, जो तुम में से, युमिनु बिल्लाह, ईमान रखता है अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखरत के दिन पर, ज़ालिकुम अज़का लकुम, ये ज़्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए, व अतहरु, और ज़्यादा तहारत वाला है। वल्लाहु, और अल्लाह, यालमु, जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। अब तलाक ही की मद में और निकाह की मद में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हुक्म जो है वो रज़ात का है, दूध पिलाने का। इस्लामी रज़ात जो है वो कुरान में बयान हुई है। वल वालिदातु, और माएँ जो हैं, युर्दियाना, वो रज़ात करें, औलादहुन्ना, अपनी औलादों की, हौलैनी कामिलैन, 2 साल। हौलैन ये तस्निये का सीगा है, ऐन जहाँ पे आता है तो ये तस्निया यानी दो हो जाता है, तो हौलैन कामिलैन, 2 साल, लिमन अरादा, उसके लिए जो इरादा करें, अयुतिम रज़ा, कि वो रज़ात को पूरा करेगा। माँ का दूध जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं पैदा हो सका दुनिया में, आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है। माँ का दूध बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक कॉम्पोजिशन में बदलता है, उसका फैट कंटेंट, उसका प्रोटीन कंटेंट, वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, अल्लाह का एक मोजज़ा है माँ का दूध। तो जो इरादा करे कि वो रज़ात पूरी करेगा, वो अलल मौलूदे, और बाप के ऊपर, लहू, उसके लिए, रिज़्क़ुहुन्ना, यानी माँ और बच्चे का खाना पीना, रिज़्क़ जो है वो इस बाप पर है। वह किस्वतुहुन्ना, और उनके लिबास, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। बिल मारूफ हर जगह पे आएगा जहाँ कुरान में फैमिली लॉ बयान हुआ है, क्योंकि हर मुआशरे के अपने कस्टम्स होते हैं, अपनी लिमिट्स होती हैं। हैं जी, एक गरीब घर में ब्याई हुई लड़की ये नहीं कह सकती कि आप मुझे ताजमहल लेके दें क्योंकि मैंने आपके यहाँ बच्चा पैदा किया है। हर किसी की अपनी लिमिटेशंस हैं, हर किसी का अपने कस्टम्स हैं, और उसके मुताबिक कुरान का हुक्म है कि उसके अंदर रहते हुए एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। ला तुकल्लफ नफ्सुन, नहीं मुकल्लफ है, नहीं तकलीफ़ देना, नहीं बोझ उठाता है, नफ्सुन, कोई भी जान, इल्ला वुसअहा, मगर अपनी वसअत के मुताबिक। ला तुदार वालिदतुन, नहीं तकलीफ देनी है माँ को भी वलदिहा, उसके बच्चे के जरिए। क्या तकलीफ होती है? हम तुम्हारा बच्चा छीन लेंगे, हम तुम्हारा बच्चा ले जाएंगे, हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। वला मौलूदुल लहू बेवलदिही, और ना ही बाप को तकलीफ देनी है उसके बच्चे की वजह से। व अलल वारिसे मिस्लु जालिक, और जो वारिस है, जो लेपालिक बच्चे हैं या जो कस्टोडियंस हैं, गार्डियंस हैं, उनके लिए बिल्कुल ऐसे ही अहकामात हैं। फ़इन अरादा फिसवालन, बस अगर इरादा करें दूध छुड़ाने का, फिसवाला अंतरादिम मिनहुमा, तो दोनों की रजामंदी से करना है। देखें, माँ का बच्चे का दूध छुड़ाना जो है वो भी मियाँ बीवी की बाहमी रजामंदी से होगा। वतशावुरे, और मशवरा करना है, आपस में मशवरा करना है दोनों ने, और फिर ये काम करना है। यानी बच्चे का इंटरेस्ट जो है उसमें माँ बाप दोनों का मशवरा बहुत अहम है। फला जुनाह अलैहिमा, तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। व इन अरद तुम, और अगर तुम ये इरादा करो, अन तस्तरदिउ, कि तुम रजात करोगे औलादकुम, अपनी औलाद के लिए, फला जुनाह अलैकुम, तो कोई गुनाह नहीं है तुम पर। इजा सल्लम तुम, जब तुम ये काम यानी कि रजात करवाओ, माँ के अलावा किसी औरत से रजात करवाओ, माँ आतई तुम बिलमारूफ, तुमने उसका मुआवजा देना है दस्तूर के मुताबिक। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, बिमा तामलून बसीर, जो तुम अमल करते हो से देखने वाला है। निकाह के और तलाक के और रजात के अहकामात के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट औरतों की ज़िंदगी का, वो है बेवकी। अगर एक औरत का शोहर फौत हो जाए तो कुरान उसके बारे में क्या कहता है? वल्लज़ीना यतवफ़ाउन मिनकुम, और जो लोग फौत हो जाएं तुम में से, वयज़रूना अज़वाजन, और वो छोड़ जाएं बीबियाँ, यतरब्बसना, वो रोके रखें, बे अनफुसहिन्ना, अपने अपने आप को, 4 अशहुरिन, 4 महीने, व अशरन, और 10 दिन। 4 महीने 10 दिन इस्लामी बेवगी के दौरान जो टाइम इन्होंने गुजारना होता है वो इद्दत का, जो हम आम जबान में उसको इद्दत कहते हैं, ये वो है 4 महीने 10 दिन। और ये यूनिफॉर्म है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं लोगों को, कहाँ पे गुजारना है, कैसे गुजारना है, क्यों गुजारना है, हमें क्या ज़रूरत है इसकी, क्या हम अपने कज़न से मिल सकते हैं, क्या हम अपने वर्क प्लेस में जा सकते हैं। इद्दत जो है ये एक नॉर्मल ग्रीफ पीरियड है, और इसको अगर सही तरह इस्लामी तरीके से गुजारा जाए तो ये औरत की फिजिकल और मेंटल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना फिर जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, बार बार इंसान को फ्लैशबैक्स होते हैं, वो अपने उस गम से पूरी तरह समझौता नहीं कर पाता। फ़ैज़ा बलगना अजलहुन्ना, बस जब वो पहुंच जाएं अपनी मुद्दत को, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, फ़ी मा फ़अलना, जो भी वो करें, फ़ी अनफुसहिन्ना, अपने बारे में। ये बेवा औरत जब 4 महीने और 10 दिन गुजार ले, और प्रेफरेबली शोहर के घर में गुजारे जहाँ पे बेवा हुई है ये, तो फिर इसके कोई मसला नहीं है कि वो जो भी करे बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक। यानी अगर ये दूसरा निकाह करना चाहती है तो वो उसमें कोई मसला नहीं है। वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा तामलून खबीर, जो तुम अमल करते हो उससे बाखबर है। वला जुनाह अलैकुम, और तुम पर कोई गुनाह नहीं है, फीमा, उसमें जो, और रद तुम अर्ज़ करो, तुम पेश करो, बिही, उसके साथ, मिन खिदबत निसाए, इन औरतों को एक प्रपोज़ल भेजो, इन औरतों को तुम एक रिश्ता भेजो। औ अकनन तुम, या तुम छुपा के रखो, फी अनफुसिकुम, अपने दिलों में। इस इद्दत के दौरान अगर तुम औरत को इशारे से बताओ कि तुम उसे निकाह करना चाहते हो, या तुम उसे दिल में छुपा के रखो, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अलिम अल्लाह, अल्लाह जानता है, अन्नकुम, ये के, सतस्कुरून हुन्ना, अनकरीब तुम जिक्र करोगे उनसे। वलाकिन, और लेकिन, ला तुआइदू हुन्ना, ना तुम उन्हें उनके साथ वादे करो, सिर्रन, खुले खुले, यानी फ्रैंकली उनको ये कहो कि जैसे ही आपकी इद्दत ख़त्म होगी मैं आपसे निकाह कर लूँगा। ऐसा नहीं है, ये एक बैड कॉन्डक्ट है, एक टेस्टलेस और एक एक फजूल बात है ये। अगर वो इद्दत में है तो तो उनको इशारे में कहना है। और हदीस में ये है, बहुत ही प्यारी बात है जो हमारे शारे जो हैं शरीयत लिखने वालों ने कहा है कि इशारे का मतलब है, जैसे कोई किसी बीबी से ये कहे कि अगर मेरी कोई बीबी होती तो वो आप जैसी ही होती। ये नहीं कि मैं आपसे निकाह कर रहा हूँ, लेकिन उनकी तारीफ कर रहे हैं और इशारे से उनको बता रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मेरा निकाह हो जाए। और खुले खुले वादे नहीं कर रहे, इल्ला सिवाय अन तकूलू, ये कि तुम कहो कौलम मारूफा, एक डिसेंट बात, एक जानी पहचानी अच्छी बात। वला ताजिमू, और ना तुम इरादा करो उकदतन निकाह, उकदतन निकाह ही निकाह करने का, निकाह बांधने का। हत्ता यबलुगल किताबो, यहाँ तक कि वो लिखी हुई मुद्दत जो है अजलहू अपनी अपने टाइम तक पहुँच जाए, यानी इद्दत का टाइम ख़त्म हो जाए। वालमू, और जान लो अन अल्लाह, ये कि अल्लाह यालमू वो जानता है माफी अनफुसिकुम जो तुम्हारे दिलों में है। फहजरू हो, बस उससे डरो, यानी अपने दिल साफ रखो। वालमू, और जान लो अन अल्लाह, ये कि अल्लाह गफूरुन हलीम वो बख्शने वाला और बड़े तहम्मुल वाला है। ला जुनाह अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। इन तल्लक्तुमुन निसाअ, अगर तुम तलाक दो बीबियों को, मालम तमस्सूहुन्ना, जिनको तुमने अभी नहीं छुआ। ये रुख्सती से पहले तलाक का मसला बयान किया जा रहा है। औ तफरिदू लहुन्ना, या तुमने अभी लिखा भी नहीं है, फर्ज भी नहीं किया उनके लिए। फरीदतन, वो फर्ज, ये मेहर को कहा जा रहा है, क्योंकि निकाह में, निकाह सुन्नत है लेकिन जब निकाह होती है तो उसमें मेहर लिखना फर्ज है। तो अभी तुमने उसका मेहर भी नहीं मुकरर किया, ना ही उसे छुआ है, लेकिन तुम उसे तलाक दे रहे हो। वह मत ऊहन्ना, और उन्हें एक फायदा दो, उन्हें एक रकम दो, उन्हें एक गिफ्ट दो। अलल मोसी, जो वसत वाला है यानी अमीर है, कदरुहू उसकी हैसियत के मुताबिक। वह अलल मुख्तरी, और जो तंगदस्त है, कदरुहू उसकी हैसियत के मुताबिक, यानी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ देना है अगर औरत को तलाक दी है। मताअम बिल मारूफ, ये एक फ़ायदा है जो दस्तूर के मुताबिक देना है। हक्कन अलल मुहसिनीन, ये मोहसिन लोग देते हैं, यानी अभी निकाह भी, निकाह हुआ है लेकिन मेहर नहीं मुकरर हुआ और उनका आपस में कोई रिश्ता भी नहीं कायम हुआ, लेकिन तलाक की नौबत आ गई है, कोई मसला हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो फिर भी वो उनको एक गिफ्ट देकर रुख्सत करते हैं। वह इन तवल्लक्तुमूहुन्ना, और अगर तुम उन्हें तलाक दे दो, मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, इससे पहले कि तुम उन्हें छुओ। वक़द फ़रत तुम लहुन्ना, और तहकीक तुम मुकर्रर कर चुके हो उनके लिए। फरीदतन मेहर, फनिस्फ़ो बस आधा देना है, मा फरत तुम जो तुम फ़र्ज कर चुके हो, जो तुम लिख चुके हो। अगर मेहर मुकर्रर हो गया है, जैसे 50,000 रुपये मुकर्रर हुआ है, तो 25,000 रुपये रुख्सती से पहले अगर तलाक हो गई है तो फिर आधा मेहर दे के रुख्सत करना है। इल्ला अन याफूना, सिवाय इसके कि वो माफ़ कर दें। औ याफुल्लज़ी, या माफ़ कर दे वो, बेअदही जिसके हाथ में है, उकदतुन निकाह उस निकाह का अक्त, उस निकाह का कंट्रोल, ये औरत का वली है, क्योंकि पहला निकाह जो है वो वली के बगैर नहीं हो सकता। अगर औरत का पहला निकाह है तो उसका बाप या भाई उसका वली होगा और वो उसकी जगह वो निकाह में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर वो मेहर माफ़ कर दे तो फिर ठीक है, फिर नहीं दो, लेकिन अगर वो डिमांड करे तो फिर वो आधा मेहर उसको देना होगा। व इन तअफू, और अगर तुम माफ़ कर दो, अक्रबुल लित्तक्वा, बेहतर है ये तकवा के, बेहतर ज़्यादा करीब है ये तकवा के। वला तनसवुल फजला, और हाँ भूलना नहीं है फजल, एक डिसेंट तरीका, एक रिस्पेक्टफुल कॉन्डक्ट, बैनकुम आपस में, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की इकराम करना, एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की इज्जत करना। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा तामलून बसवीर, जो तुम करते हो उसे देखने वाला है। यहाँ तक ख़वातीन के मसाइल जो हैं मेरे ख्याल में पूरे हो गए हैं, और अब सिपारा जो है वो ख़त्म होने के करीब है। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम लोग सिपारे को भी ख़त्म करते हैं और ये सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा।